विगत सत्र में दशम स्कंद की कथा सुने, अब इसके बाद एकादश स्कंद। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, जिसमें प्रथम अध्याय में यदुवंशियों को श्राप, इसके बाद 4 अध्याय में निमी महाराज और 9 जोगेश्वरों का संवाद, फिर 6वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव संवाद, और आगे के 7, 8, 9 अध्याय में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है, फिर 10वां से 29वां अध्याय तक उद्धव और श्री कृष्ण के बीच संवाद है, जिसको लोग उद्धव गीता भी कहते हैं, और अंतिम के 30वां अध्याय में जदकुल के संहार की कथा और 31वां में श्री भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। इस प्रकार एकादश स्कंद में 31 अध्याय है। तो अब प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम यदुवंशियों की सहायता से पृथ्वी में बड़े हुए दैत्यों के संहार किए, फिर कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध करा करके पृथ्वी का भार हल्का किए। इतना करने के बाद भी भगवान अभी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर जादवों का भार ज्यों का त्यों बना हुआ था। तो भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे कि यदुवंश में परस्पर कलह उत्पन्न करा करके और आपस में इनका विनाश करके तब मैं अपने धाम जाऊंगा। तो सर्वशक्तिमान भगवान सत्य संकल्प हैं, उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय किया और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के साप के बहाने अपने वंश को समेट कर अपने धाम चले गए। इसके बाद महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनका चित सदैव कृष्ण में लगा रहता था, फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? ब्राह्मण उन्हें श्राप क्यों दे दिए? उस श्राप का क्या कारण था? यदुवंशियों के स्वामी प्रियतम श्री कृष्ण हैं, फिर उनमें फूट कैसे उत्पन्न हो गई? कैसे उनकी भेद दृष्टि हुई, परस्पर में लड़ने लगे? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे थे, तो उस समय ऋषि मुनि प्राय द्वारिका में आकर रहा करते थे। भगवान के दर्शन, उनके साथ बातचीत, उनके संग के प्राप्ति के लिए, तो उस समय भी कुछ महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आकर निवास कर रहे थे। यद्यपि भगवान उन्हें बार बार समझा बुझा कर भेजते थे कि जगत के हित के लिए आप लोग विचरण कीजिए, अपने अन्यत्र स्थानों में रहिए, फिर भी समझाने के बाद भी वे आया करते थे भगवान के सानिध्य लाभ के लिए। तो उस समय विश्वामित्र, असित, कर्ण व दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि महात्मा पिंडारक क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। एक दिन की बात है, यदुवंश के कुछ राजकुमार खेलते हुए उनके पास आए। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। वे लोग जामवती नंदन शाम को स्त्री के रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, यह कजरारी आंख वाली सुंदरी गर्भवती है, यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचा रही है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है, और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए कि यह सुंदरी कन्या जन्मेगी या पुत्र? हे महाराज, जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि मूर्खों, यह न पुत्र उत्पन्न करेगी न पुत्री, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर बालक तो बहुत डर गए। तुरंत सांप का पेट खोलकर देखा तो पछताने लगे, एक लोहे का मूसल मिला। अरे, यह तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया, हम लोग अब क्या करें? फिर वे लोग जादवों के भरी सभा में लाकर उग्रसेन जी के सामने वो मूसल रखे और सारी घटना को सुनाए। जदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाले और समुद्र में फेंकवा दिए। उस लोहे के टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक मछली निगल गई और उस मछली को मछुआरों ने अपने जाल में फंसाया और जब उसके शरीर से वो लोहे का टुकड़ा मिला तो उसको जरा नामक बहेलिया ले लिया और अपने बाण के नोक में लगा लिया और वह लोहे का टुकड़ा शेष लोहे के टुकड़े बह बह कर समुद्र के किनारे जाल निकले जा लगे और वहां पर वे एक घास के रूप में उत्पन्न हो गए जिनको एरका कहते हैं। एरका घास के रूप में प्रसिद्ध। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। काल रूपी प्रभु ब्राह्मणों के सांप का अनुमोदन ही किए। इसके बाद दूसरा अध्याय सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं बिना प्रश्न के। महाराज परीक्षित की कोई जिज्ञासा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर प्रसंग जिसमें भागवत धर्म का निरूपण होगा। दशम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने कृष्ण संबंधी अनेक प्रश्न किए और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मेरे हित के लिए इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कह सकते हैं। आप अपनी इच्छा से मेरे लिए उपादेय कथा कर सकते हैं, जो मुझे पूछने नहीं आया और मेरे हित में हो आप अवश्य उसको सुनाइए। शायद उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी स्वतः प्रारंभ कर रहे हैं कि गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवासिन नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालसह। हे कुरुद्वह, हे कुरुनंदन परीक्षित, भगवान गोविंद के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका जहाँ दक्ष आदि के श्राप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी देवर्षि नारद प्रायः आकर रहा करते थे, क्योंकि देवर्षि नारद के मन में कृष्ण की सन्निधि में रहने की बहुत लालसा थी, कृष्ण के भक्ति करना चाहते थे, इसलिए बार बार विदा करने के बाद भी आया करते थे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि अवात्सिन नारदो भीष्णम, बार बार देवर्षि नारद आते थे, क्यों? कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की लालसा थी, कृष्ण की सन्निधि में रहने की लालसा थी। यह कह करके सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कोन राजन इंद्रिवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोतमयी। हे राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां प्राप्त है वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरणों की उपासना नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ है। सर्व ओर से मृत्यु से घिरा हुआ प्राणी क्यों नहीं भगवान का भजन करेगा यदि उसे इंद्रियां प्राप्त है। भगवान के भक्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केवल सुंदर इंद्रियों की आवश्यकता है, जो ठीक ठीक काम कर सके, जिससे भगवान की कथा सुनी जा सके, भगवान के नामों को बोला जा सके, भगवान की सेवा किया जा सकता, यही योग्यता है भगवान के भक्ति के लिए। इतना कहकर फिर आगे कहते हैं कि एक दिन की घटना है, देवर्षि नारद अपने द्वारिका निवास काल में वसुदेव जी के घर आए। वसुदेव जी देवर्षि नारद को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए, उनका स्वागत सत्कार किए, उनकी प्रशंसा किए और उनके चरणों में कुछ निवेदन करने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि भूता नाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधु नाम त्वादिशाम अच्युतात्म नाम। हे भगवान, देवताओं के चरित्र भी कभी कभी प्राणियों के लिए दुख के कारण हो जाता है, कभी सुख का कारण बनता है, परंतु आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान के लिए है, उनकी प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। भजंती जे जथा देवान देवा अपि तथैव तान छायेव कर्म सचिवा साधवो दिन वत्सला। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के तरह उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, कर्म के अधीन फल देते हैं, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, जो संसारिक संपत्ति और साधन से हीन है ऐसे दीनहीन को अपनाते हैं। ब्रह्मन तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्रह्मन, यद्यपि हम आपके शुभागमन से ही कृत कृत हो गए, फिर भी आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाएगा। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना की, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले, मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। वास्तव में उस समय भगवान की लीला से मैं मुग्ध था। हे सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आता है, अनायास पार हो जाऊं। यथा विचित्र व्यसनाद भवद्भिर विश्वतो भयात मुचेम ह्यंजसई वाधा तथा न साधि सुब्रत। देवर्षि नारद वसुदेव जी के बातों को सुनकर कहे कि हे राजर्षे, आपका निश्चय बहुत सुंदर है। आप भागवत धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं, यह सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। हे वसुदेव जी, अब भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनते, वाणी से उच्चारण करने, चित से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, या कोई इसका पालन कर रहा है तो उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। श्रोतोनु पठितोध्यात आदितो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रोहोपि। हे वसुदेव जी, आपने जो प्रश्न किया इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ देव के पुत्र नव जोगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के भगवान ऋषभ देव, और ऋषभ देव के सौ पुत्रों में राजर्षि भरत आदि के साथ नौ पुत्र महाजोगेश्वर हुए, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आभिहोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। एक बार की बात है, इसी अजनाब वर्ष भारत वर्ष में महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के साथ यज्ञ करा रहे थे, और उनके यज्ञ मंडप में पूर्वोक्त नव जोगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए पधार गए। विदेहराज निमि इन नव जोगेश्वरों को देखकर बड़े आनंदित हुए, विधि पूर्वक इनकी पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम किए, बड़ा विनित भाव में सिर झुका करके उनसे कुछ प्रश्न किए। पहले उनके आगमन की प्रशंसा किए, इसके बाद जिज्ञासा किए। तो महाराज निमि कहते हैं, मन्ने भगवत साक्षात पार्षदान यो मधु दुषह विष्णु भूतानि लोका नाम पावनाय चरंति ही। हे भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग भगवान मधुसूदन के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद लोग संसारिक प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य जीवन में भी दुर्लभ है भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन। वैकुंठ प्रिय दर्शनम का अर्थ है वैकुंठ भगवान जिनका प्रिय है, अथवा भगवान वैकुंठ का जो प्रिय है, ऐसे भक्तों का दर्शन। तो हे प्रभु, हे त्रिलोक पावन महात्माओं, आप लोगों से यह प्रश्न करता हूँ कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। अतः आत्यंतिकम क्षेमम प्रीक्षामो भवतो नघा संसारेस्मिन क्षणार्धोपि सत्संग सेवधि निणाम। इसके साथ साथ पूछते हैं कि हे जोगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हैं तो आप कृपा करके भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और उन धर्मों का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान को अपने वश में कर लेता है। भागवत धर्म के पालन करने वाले शरणागत भक्तों को भगवान अपने आप तक को दान कर डालते हैं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यज। तो फिर आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि जब निमि महाराज ने भगवत प्रेमी संतों से इस प्रकार प्रश्न किया तो उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए उन ऋतिजों के साथ बैठे हुए महाराज निमि से नवजोगेश्वरों में सर्वश्रेष्ठ कवि जी बोलने लगे। पहले उन नवजोगेश्वरों में से कवि जी ने निमि महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया।